डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:9 ईसा 17 से 18 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 9 यशाया अध्याय 17 और 18 है। आज रात हम अध्याय 17 से 18 को देख रहे हैं और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि यह सब एक साथ कैसे फिट बैठता है। आपके लिए मेरा एक लक्ष्य, यदि आप मई के अंत तक दृढ़ रहने में सक्षम हैं, तो आपको यह एहसास होगा कि यह बड़ी किताब एक साथ कैसे फिट बैठती है। कई लोगों के लिए यह इतनी बड़ी चीज है कि आप इसे अध्याय दर अध्याय या अपने पढ़ने में इस तरह से काम कर रहे हैं और आप बस खो जाते हैं। और इसलिए मेरा लक्ष्य आपको एक प्रकार का रोड मैप देना है। इसलिए मैं इन बातों को दोहराता रहूंगा और इसे दोहराता रहूंगा और दोहराता रहूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है, दोहराव शिक्षा की आत्मा है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो दोहराव शिक्षा की आत्मा है। तो अध्याय 1 से 6 दासत्व समस्या, इस इज़राइल पापी भ्रष्ट मानवीय महानता और शक्ति से आसक्त होने का आह्वान है, और फिर भी यह वादा है कि भगवान इन लोगों को राष्ट्र के लिए अपने दूतों के रूप में शुद्ध और पवित्र उपयोग करने जा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? यह वर्तमान इज़राइल कभी वह इज़राइल कैसे बन सकता है? और जैसा कि मैंने आपको सुझाव दिया था, मेरा मानना है कि यशाया हमें एक आदर्श के रूप में अपना आह्वान देता है। यदि अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के साथ जो हुआ वही अशुद्ध होठों वाले राष्ट्र के साथ हो सकता है, तो वे वास्तव में उसके सेवक बन सकते हैं। जैसे यशाया राष्ट्र को परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर का सेवक था, वैसे ही राष्ट्र दुनिया को संदेश देने के लिए परमेश्वर का सेवक बन सकता है। यह अध्याय 1 से 6 है। फिर अध्याय 7 से 39 तक विश्वास पर बार बार जोर देने की विशेषता है। और फिर अपने बाइबल अध्ययन में दोहराव की तलाश करें। दोहराव शिक्षा की आत्मा है। जब लेखक कुछ दोहरा रहा है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वह एक बात कहने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए इन अध्यायों के माध्यम से हमें विश्वास के लिए विभिन्न शब्द मिलते हैं, विश्वास की अवधारणा की विभिन्न अभिव्यक्तियां मिलती हैं, और मैं तर्क दे रहा हूं कि वह कह रहा है कि विश्वास दासत्व का आधार है। यहीं पर बगीचे में चीजें गलत हो गईं। आप भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। भगवान आपके पक्ष में नहीं है। भगवान आपके लिए नहीं है। और चूंकि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा। तो मूल बात यह है कि क्या आप और मैं यहोवा पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम मैं हूं पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम उस पर अपना भार डाल सकते हैं? और यशाया का उत्तर बिल्कुल है। मैंने आपको सुझाव दिया है कि यह खंड 7 से 39 तीन भागों में विभाजित है। सबसे पहले अध्याय 7 से 12 में राजा आहाज को परमेश्वर पर भरोसा रखने की चुनौती दी गई थी। उसके दो उत्तरी पड़ोसी इज़राइल और सीरिया उस पर हमला कर रहे हैं। यहूदा को बड़े दुश्मन असीरिया के खिलाफ गठबंधन में मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यशाया द्वारा परमेश्वर पर भरोसा करने की चुनौती पर आहाज नहीं कहता है, और वास्तव में वह उसे इसराइल और सीरिया से छुड़ाने के लिए अश्शूर पर भरोसा करता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे तीन चूहे आपस में लड़ रहे हों और उनमें से एक बिल्ली को काम पर रख ले। अच्छा नहीं है। और इसलिए यशाया इसके निहितार्थों के बारे में बात करता है, और वह पूरे रास्ते चला जाता है। असीरिया उन पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन एक दिन असीरिया खुद गिर गई क्योंकि वह भगवान का अहंकारी उपकरण था। और जब ऐसा होता है तो यिशै के ठूंठ में से एक जड़ जले हुए ठूंठ से उस देश में जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता था, उस जले हुए ठूंठ से एक छोटी सी टहनी निकलती है। हरा असहाय गोली मारो। और वह अंकुर वादा किया हुआ मसीहा है जिसकी सारी दुनिया तलाश करती है। तो यहां इस खंड में यशाया पूरी श्रृंखला का पता लगाता है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा, लेकिन जब आपने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है और न्याय का अनुभव किया है तो भगवान अनुग्रह में आएंगे। क्या आपको ऐसे भगवान पर भरोसा नहीं करना चाहिए? फिर विश्वास का पाठ। चूंकि आप परीक्षा में असफल हो गए, हम पाठ्य पुस्तक पर वापस जा रहे हैं और हम इसे फिर से आजमाने जा रहे हैं, और हम आपको कारण बताने जा रहे हैं कि आपको मानवता के राष्ट्रों पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए और आपको भगवान पर भरोसा क्यों करना चाहिए। अब हम इस खंड को देख रहे हैं, राष्ट्रों के विरुद्ध न्याय की वाणी, अध्याय 13 से 23। हमने देखा कि हमने बेबीलोन से कैसे शुरुआत की और मैंने आपको सुझाव दिया कि बेबीलोन एक तरह से प्रतीकात्मक है। बेबीलोन मानवता की साक्षात महिमा है, और इसलिए अध्याय 14 में कोई भी प्राणी जो स्वयं को ईश्वर के स्थान पर ऊंचा उठाता है उसका पतन होना तय है। फिर हमने देखा कि कैसे यशाया राष्ट्रों के प्रतीक के रूप में बेबीलोन, मेसोपोटामिया की शक्ति के वर्तमान प्रतिनिधि असीरिया और पड़ोसी पलिश्तियों के बारे में बात करने से लेकर व्यापक कोण को एक संकीर्ण फोकस में लाता है। और फिर मृत सागर के दूसरी ओर आपके दृष्टिकोण से पलिश्ती यहाँ है, मृत सागर यहाँ है और मोआबी यहाँ है। अब आज रात हम अध्याय 17 और 18 को देखने के लिए तैयार हैं। तो हम श्लोक 1 से शुरू करते हैं। और यह दैवज्ञ किसके विरुद्ध निर्देशित है? दमिश्क सीरिया की राजधानी। इसलिए जो हमने पहले ही देखा है उसके आधार पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अध्याय 17 का शेष भाग दमिश्क के बारे में बात करेगा। गलत। वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक हम श्लोक 3 में पहुंचे तब तक क्या हो चुका था? किला कहां से गायब हो जाएगा? एप्रैम क्या है? इज़राइल का उत्तरी राज्य। इसलिए दो छंदों के भीतर हमने दमिश्क के बारे में कम से कम पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया है और इस चीज में इज़राइल को भी शामिल कर लिया है। एप्रैम से गढ़ मिट जाएगा, दमिश्क से राज्य नष्ट हो जाएगा, सीरिया के बचे हुए लोग इसराइल के बच्चों की महिमा के समान होंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पर एक साथ विचार क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, वे यहां सहयोगी थे जो यहूदा के विरुद्ध थे और जिन्होंने आहाज को इतना भयभीत कर दिया कि उसे लगा कि उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन पर भरोसा करना होगा। तो फिर से इन अध्यायों में भगवान कह रहे हैं, देखो तुम्हें एक तरफ इन राष्ट्रों से डरना नहीं है और दूसरी तरफ तुम्हें उन पर भरोसा नहीं करना है। तो यहाँ वह दमिश्क और इसराइल को एक ही निर्णय दैवज्ञ में एक साथ शामिल करता हुआ प्रतीत होता है। और श्लोक 4 से शुरुआत करते हुए वह पूरी तरह से इसराइल में बदल जाता है। अब आपको क्यों लगता है कि वह ऐसा कर सकता है? ठीक है, यहूदा के लिए उत्तरी भाई पर भरोसा करने की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक संभावना है। मुझे लगता है कि एक और संभावना है जो इसका दूसरा पहलू है। इसराइल वह हो सकता है जिससे उन्हें सबसे अधिक डर लगता होगा क्योंकि वे सबसे करीब हैं। तो मुझे लगता है कि यह दोनों यहाँ हैं। आपको अपने उत्तरी भाई पर भरोसा करने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन आपको अपने उत्तरी भाई से डरने की भी सबसे अधिक संभावना है, और इसलिए वह उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब श्लोक 1-3 के संबंध में परमेश्वर के लोगों द्वारा राष्ट्रों पर भरोसा न करने के मुद्दे के बारे में पूछें। यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें लगातार अपने तरीके से काम करना होगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अमेरिका इसराइल के समकक्ष नहीं है। यदि इसराइल का कोई समकक्ष है तो वह चर्च है। अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें वर्षों से अनेक ईसाई लोग निवास करते रहे हैं। दुख की बात है, कम और कम। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रों पर भरोसा न करने का यह मुद्दा चर्च के सदस्यों के रूप में हमसे कैसे संबंधित है? उसे थोड़ा घुमाओ। क्या आप उनके देवताओं पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप उनके विश्व दृष्टिकोण पर भरोसा कर रहे हैं? हाँ, 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 क्योंकि हम भगवान के पसंदीदा हैं, इसलिए हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते और हमारी जीत निश्चित है। अन्यथा यह कैसे होता है? यदि हम चर्च की तुलना इसराइल से करते हैं तो चर्च को किस चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दुनिया, भगवान के अलावा कुछ भी, कोई गठबंधन? जब मैं देखता हूं कि चर्च दुनिया के तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूं। मैं उन चर्चों के बारे में बहुत चिंतित हूं जो धन संचयन का उपयोग करते हैं, और यह धन संचय के लिए एक व्यवसाय है। अब वह एक महत्वपूर्ण ईसाई हो सकता है या वह एक महत्वपूर्ण ईसाई हो सकती है, और वे कह सकते हैं, मैं अपना व्यवसाय ईसाई सिद्धांतों पर चला रहा हूं, और फिर भी अब मैं यहां केवल आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं, और फिर भी मैं सभी जनसांख्यिकी और इस तरह की सभी चीजों को सुलझाने के बारे में थोड़ा चिंतित हूं। क्या यह अपने आप में गलत है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं बस इस बात से चिंतित हूं कि यह भगवान का काम करने के लिए दुनिया के तरीकों पर भरोसा करने लगा है। मुझे लगता है कि यह हमेशा खतरनाक होता है। मैं चिंतित हूं जब एक चर्च के रूप में हम खुद को राजनीतिक कार्रवाई समूहों में शामिल करना शुरू कर देंगे। अब आप जानते हैं, मैं एक रूढ़िवादी हूं। मैं अत्तिला दहुन के थोड़ा दाहिनी ओर हूं, लेकिन मैं तब भी बहुत चिंतित रहता हूं जब हम राजनीतिक प्रक्रिया पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या वह गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। मैं बस यही सोचता हूं कि यह खतरनाक है। तो मुझे लगता है ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। हम बात कर सकते हैं, अरे हाँ, उन यहूदियों के बारे में, उन्हें दुनिया पर इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए था। खैर, ये वे हैं, ये हम हैं, और यह शब्द हमसे बात करता है। हाँ, मैं उसे एक बार और ले जाता हूं। मैं अपने लिए खड़ा हूं। इसे स्वयं मेरे द्वारा किया जा सकता है। यह एक उत्कृष्ट बात है, एक उत्कृष्ट बिंदु। व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में बात करना बहुत आसान है। मैं बच गया हूं। आपका क्या मामला है? इस भावना के बजाय कि हम इसमें एक साथ हैं। मुझे यकीन है कि मैंने आपसे पहले कहा है कि भगवान द्वारा मुझे दिए गए इन लंबे वर्षों में मैं कई चर्चों में गया हूं, और यह बहुत दिलचस्प है। मैं उन चर्चों में गया हूं जो एक साथ स्वर्ग जा रहे हैं, और मैं ऐसे चर्चों में गया हूं जो एक साथ नरक में जा रहे हैं, और इसका संबंध हमेशा उनके धर्मशास्त्र से नहीं होता है। तो हां, हां, हम इसमें एक साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार की चीजों के बारे में सोचें जब हम यहां अपना काम करेंगे। 21वीं सदी में ईश्वर के लोगों के रूप में इसका हमसे क्या संबंध है? क्योंकि फिर से यही वह धारणा है जिस पर मेरा पूरा जीवन और मंत्रालय आधारित है और मैं आज रात टीवी देखने के बजाय यहाँ क्यों हूँ। मुझे लगता है ये हमारे लिए है और मुझे लगता है कि इसीलिए आप भी यहाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक 5 और 6 में वाणी के अलंकार, विस्तारित अलंकार का क्या मतलब है? वह इज़राइल के बारे में बात कर रहा है। वह इज़राइल के बारे में क्या कह रहा है? यह उस समय के समान होगा जब काटने वाला खड़ा हुआ अन्न बटोरता और अपने हाथ से बाले काटता है, जैसे कोई रपाइन नाम तराई में बाले बीनता हो। उसमें बालियां छोड़ी जाएंगी, जैसे जैतून के पेड़ को पीटने पर सबसे ऊंची शाखा के शीर्ष पर 2 या 3 जामुन और फलदार पेड़ की शाखाओं पर 4 या 5 जामुन, इसराइल के भगवान की घोषणा करते हैं। वो क्या बोल रही है? वहाँ एक अवशेष होगा, हाँ हाँ, लेकिन केवल एक अवशेष। जब शत्रु इसराइल के साथ समाप्त हो जाएगा तो वे जैतून के पेड़ की तरह होंगे, जिसकी 1 या 2 जैतून शीर्ष शाखा पर लटके होंगे, जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता था। जब परमेश्वर का इसराइल से नाता खत्म हो जाएगा तो वे गेहूं के खेत की तरह हो जाएंगे और अनाज के कुछ डंठल होंगे जो यहाँ पर काटने वाले की बाह से गिर गए होंगे। यह एक प्रकार की पसंदीदा तस्वीर है जिसका उपयोग कई भविष्यवक्ता इस बारे में बात करने के लिए करना पसंद करते हैं कि यह कैसा होने वाला है। यह एक कटे हुए खेत, एक कटे हुए जैतून के बगीचे जैसा होगा जब बहुत कुछ नहीं बचा होगा। तो आप इज़राइल से डरते हैं या आप इज़राइल पर भरोसा करने के लिए प्रलोभित हैं? मैं आपको बता दूं, उनका फैसला आने वाला है और वे छोड़े जा रहे हैं। यहां बस एक जैतून, वहां अनाज का एक डंठल और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि श्लोक 7 और 8 गद्य में हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी बाइबल इसे इस तरह बताती है या नहीं। अधिकांश आधुनिक बाइबलें ऐसा करती हैं। बाइबल के विद्वानों के बीच कभी कभी कुछ तर्क होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिब्रू कविता की पहचान पर्यायवाची विचारों का विचार है। आपके पास एक पंक्ति है और यह सामान्यतः 3 उच्चारण इकाइयों में कुछ कहती है। अब कभी कभी वे शब्दों को एक साथ समूहित करते हैं ताकि अंग्रेजी में यह 2 शब्दों के रूप में सामने आए, लेकिन हिब्रू में यह वास्तव में एक एकल उच्चारण इकाई है। तो ये पंक्ति कुछ तो कहेगी, अगली पंक्ति वही बात कहेगी, लेकिन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो 1 ए 2 ए, और यदि कवि रचनात्मक है तो वह अंत में यहाँ एक नया शब्द जोड़ सकता है जो अभी भी उस बिंदु को पुष्ट करता है। हिब्रू कविता ऐसी ही दिखती है। और यदि आप हिब्रू पढ़ते समय ऐसा होते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं, ओह, यह एक कविता है। और इसलिए आधुनिक अनुवाद इसे एक अंग्रेजी कविता के आकार में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। क्या यह सिर्फ काव्यात्मक गद्य है या यह गद्यात्मक कविता है? और इसलिए यदि आप 3 या 4 अलग अलग अनुवादों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे इस बात से असहमत हैं कि उन्होंने इसे कैसे प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं यहाँ अंग्रेजी मानक संस्करण का अनुसरण कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अधिकांश संस्करण इस पर सहमत हैं। 7 और 8 गद्य में हैं, इसलिए संभवतः उन्होंने ये छंद नहीं कहे या पिछले छंदों की तरह ही ये छंद नहीं लिखे। अब हम यह नहीं जानते, लेकिन संभवतः यह पुस्तक उनके द्वारा विभिन्न समयों पर कही गई बातों का एक संग्रह है और अब इसे एक बिंदु बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। तो मान लीजिए कि यह सही है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं पहले भी कम से कम एक बार गलत हो चुका हूँ। लेकिन यह सही है, मुझे याद नहीं आ रहा। श्लोक 7 और 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कैसे संबंधित हैं? यदि यशायाह ने इन्हें शायद अपने संग्रह में कहीं और से लिया है और यहाँ रखा है, तो उनका आपस में क्या संबंध है? श्लोक 4, 5 और 6 में क्या हुआ है? न्याय हो चुका है और परिणाम यह है कि लोग कटे हुए खेत के समान हैं। अब 7 और 8 में क्या? यह उन्हें जगाने वाला है। हाँ, कम से कम शेष हाँ। हम अगले सप्ताह उस दिन के बारे में और अधिक बात करेंगे, क्योंकि यह अगले सप्ताह के पाठन में हर जगह होता है, लेकिन हमें यह यहाँ 2 बार मिला है। श्लोक 7 और फिर श्लोक 9, जिसे मैं अगले भाग के परिचय के रूप में देखता हूँ। उस दिन का तात्पर्य निर्णय के भविष्य के समय, समाधान के भविष्य के समय से है, और ठीक उसी समय लोगों को मार दिया गया है। लेकिन फिर भी आप इस सब के निष्कर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या है? वे जागने वाले हैं, और वे विशेष रूप से किस लिए जागने वाले हैं? उनकी समृद्धि चली गई, खालीपन, और इसलिए वे अपनी खुली आंखों से क्या करेंगे? वे भगवान को देखने जा रहे हैं, और श्लोक 8 में वर्णित भगवान कौन है? निर्माता इसराइल का पवित्र। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की है, सबसे नीचे पवित्रता ईश्वर की पूर्ण अन्यता है। उनके सार में उनकी अन्यता है, लेकिन उनके चरित्र में भी उनकी अन्यता है। तो वे जागने वाले हैं, वे जागने वाले हैं, और वे कहने वाले हैं, अंदाजा लगाओ क्या? मैंने खुद को नहीं बनाया। यदि आप कभी किसी स्वनिर्मित व्यक्ति से मिले हैं, तो आप एक झूठे व्यक्ति से मिले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वे अपने निर्माता को देखेंगे, जो इस दुनिया से बाहर खड़ा है। उत्कृष्ट पवित्र निर्माता की अवधारणा बाइबल में उल्लेखनीय धार्मिक अवधारणाओं में से एक है। विकास के साथ समस्या यह है कि वह किसी पवित्र रचनाकार में विश्वास नहीं करता। मैं एक बात के लिए इस बात पर बहस नहीं करना चाहता कि भगवान को दुनिया बनाने में कितना समय लगा। मेरी समझ से यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या हम यहाँ भौतिक सृष्टि के भीतर से होने वाली आकस्मिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हैं, या हम यहाँ उस व्यक्ति के परिणाम स्वरूप हैं जो सृष्टि के बाहर खड़ा है और उसने जानबूझकर रचना की है। मेरे लिए बाइबल हमें जो सिखाती है और हमारे सार्वजनिक स्कूलों में जो धर्म पढ़ाया जा रहा है, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं, ठीक है, हम धर्म नहीं सिखाएंगे, हम विकासवाद सिखाएंगे, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, बकवास। बहुत धीरे से भी नहीं। नहीं, यह कोई न कोई धर्म है। यह उत्कृष्ट रचनाकार का धर्म है, या यह भौतिक सृष्टि के भीतर से संयोग का धर्म है। तो वे अपने निर्माता इसराइल के पवित्र व्यक्ति की ओर देखने जा रहे हैं, और वे किस चीज को देखना बंद करने जा रहे हैं? मूर्तियां। और इसके अनुसार मूर्तियां क्या हैं? उनकी अपनी रचनाएं, उनके हाथों के काम। खास तौर पर यशायाह को ऐसा करना बहुत पसंद है। आपके पास या तो बनाने वाला हो सकता है, या जो आपने बनाया है वह आपके पास हो सकता है। आप किसे चुनते हैं? आपका निर्माता या आपने क्या बनाया निर्भर करता है कि आपकी क्या करने की इच्छा है। आप अपनी खुद की बनाई चीजों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हाँ, यदि आप नियंत्रण का भ्रम पाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसलिए उनकी दुनिया बिखर गई है, और उस दिन वे कहते हैं, हे भगवान, मैं इस पर निर्भर रहा हूं कि मेरे हाथों ने क्या बनाया है। मैं कितना मूर्ख हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहां किसी के साथ ऐसा हुआ है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है एक विनाशकारी अनुभव जिसने आपको वास्तविकताओं में वापस बुलाया है। मुझे संदेह है कि हम में से अधिकांश के पास है। क्या कोई एक साझा करना चाहता है? हर कोई शर्मीला है और हम सब बाकी सब हारे हुए हैं। कभी कभी हम पूछते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? वह बुरी बात, वह नुकसान, वह त्रासदी। खैर, मुझे लगता है कि इस जटिल दुनिया में इसका आसान उत्तर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी आत्माओं की भलाई के लिए ही चीजों को घटित होने देते हैं, कि हम वास्तविकता में वापस आएं। और वह जो कह रहा है वही यहां होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जैसा कि मैंने कहा, मेरा मानना है कि श्लोक 9 अब अगले कुछ छंदों का गद्य परिचय है। वो क्या बोल रही है? वही बात हो। उस समय उनके दृढ़ नगर जंगल के ऊंचे स्थानों और टीलों की चोटियों के समान हो जाएंगे, जिन्हें उन्होंने इसराइलियों के कारण छोड़ दिया था। मुझे लगता है, जैसा कि मैंने ऊपर पृष्ठभूमि में कहा है, मुझे लगता है कि यहाँ वे का तात्पर्य कनानियों से है। वर्षों पहले तुम इसराइलियों ने इन निर्जन कनानी नगरों को देखा था। खैर, मुझे आपको बताने दें। उस महान अमेरिकी दार्शनिक के शब्दों में यह फिर से देजा वो है, योगी बेर्रा। हाँ, आप ऐसा दोबारा होते हुए देखेंगे, लेकिन अब यह आपके शहर होंगे। उनके दृढ़ नगर अर्थात इसराइलियों के दृढ़ नगर उन जंगली ऊंचाइयों और टीलों के समान होंगे जिन्हें कनानियों ने इसराइलियों के सामने से उजाड़ दिया था। अब श्लोक 10 में पहला शब्द क्या है? क्योंकि क्या किसी के पास चार हैं? हाँ, हमने देखने लायक चीज के रूप में पुनरावृत्ति के बारे में बात की है। यहां देखने लायक एक और चीज है, कारण और प्रभाव। ये इसराइली नगर अब क्यों उजाड़ हो जाएंगे? यही प्रभाव है, क्योंकि यहां कारण आता है। किस कारण से? वे भगवान को भूल गए हैं। और अब यहां कविता का एक सुंदर उदाहरण है। उन्होंने अपने शरण स्थान की चट्टान को स्मरण नहीं किया। तो आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक का यह पर्यायवाची विचार है। वे भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं है, वही बात। अब ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मूसा ने उन्हें व्यवस्था विवरण में जिस तरह से उपयोग किया था। हमने अतीत में हिब्रू के बारे में थोड़ी बात की है। हिब्रू यह नहीं मानता कि मानसिक गतिविधि और वास्तविक गतिविधि को अलग करना संभव है। तो भगवान को याद करना क्या है? इसका पालन करना है। यदि आपको याद है कि भगवान कौन है और आपको याद है कि उसने आपके लिए क्या किया है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप वही करने जा रहे हैं जो वह चाहता है। और इसी प्रकार ईश्वर को भूलना भी अवज्ञा है। अब आप देखिए, हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, वो हाँ, मैं भगवान को याद करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी नरक की तरह जी रहा हूँ। और मूसा कहते हैं, तुम परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते। ओह, मैं नहीं भूला कि भगवान कौन है। मैं यह नहीं भूला हूं कि 20 साल पहले उन्होंने मेरे लिए वहां क्या किया था। अरे हाँ, आपके पास है। या फिर आप वैसे नहीं जी रहे होंगे जैसे आप जी रहे हैं। और इसलिए यशाया यहां उस ड्यूटेरोनोमिक उपयोग को उठा रहा है। तुम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए हो। तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हें कैसे बचाया। तूने अपने शरण स्थान की चट्टान को स्मरण नहीं किया। यह फिर से एक सुंदर अभिव्यक्ति है। बाहर रेगिस्तान में दुश्मनों की एक भीड़ आपका पीछा कर रही है। और यह एक सपाट कंकरीली आकृतिहीन सतह है और आप पागलों की तरह भाग रहे हैं। और आप पहाड़ी की चोटी पर आते हैं और वहां घाटी में एक बड़ी बड़ी चट्टान है, लगभग 30 फीट ऊंची। और आप में से 3 या 4 लोग उन 3 निर्माण कार्यों में से एक करते हैं, आप जानते हैं। एक दूसरे के कंधों पर खड़े हो जाओ और एक दूसरे को ऊपर खींचो और अंत में आप चट्टान के ऊपर हैं और आपके दुश्मन नीचे इधर उधर भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं, ना 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 ना। हम यहां इसी बारे में बात कर रहे हैं। तेरी शरण की चट्टान, वह इसे छाया की चट्टान के रूप में भी उपयोग करता है। फिर से आप उस गर्म गर्म रेगिस्तान में हैं। हे भगवान, एक बड़ी चट्टान की छाया में जाओ और उस निर्दयी धूप से सुरक्षित रहो। लेकिन वह कहते हैं कि आप स्पष्ट रूप से वह सब भूल गए हैं। तुम भूल गए हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए किस प्रकार रक्षा का स्थान था। तुम भूल गए हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए किस प्रकार सुरक्षा का स्थान था। आप जिस तरह से जी रहे हैं उसके कारण। और मैं खुद से कहता हूं, अगर मैं आप पर एक उंगली उठाता हूं तो मैं अपनी तरफ 3 उंगली उठा रहा हूं। मैं कहां भूल जाता हूं कि वह कौन है और उसने मेरे लिए क्या किया है और मैं उसे कैसे याद रखूं। हां, क्या इसका संबंध किसी तरह भूलने से है, जैसे इनकार करने से? हां, एक प्रोफेसर हमें बताते रहे कि ऐसा था और मैंने कुछ देर तक उसे सुना। चूंकि मैं ईसाई हूं, मैंने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों कहते रहते हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप हमें यह कहने का प्रयास क्यों करते रहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास न करें। आपका बैकग्राउंड क्या है? और उसने कहा, मैं ऐसा ही रहा हूं। वह अपने अस्तित्व को ही उचित ठहरा रहा है। हां, उसे याद था। हां, वह था। वह जानता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इससे इनकार कर रहा था और हमें उसका पालन करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। हां, क्या आप ऐसा ही कह रहे हैं? हां, क्योंकि उसे याद था। उसे याद तो था, पर वह भूल गया था। सही, लेकिन यह एक सचेत विकल्प है। यह सही है। हां हां, तो हम उस तरह का अंतर कर सकते हैं यह कहने के लिए, हां मुझे मानसिक रूप से कुछ याद है, लेकिन मैं उस स्मृति के परिणामों, तार्किक परिणामों से इनकार करता हूं। हिब्रू कह रहा है, नहीं, आप नहीं कर सकते। यदि आपने तार्किक परिणामों को अस्वीकार कर दिया है तो वास्तव में आप भूल गए हैं। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हां, क्योंकि वास्तव में वह इतने खुले तौर पर हमें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई ईश्वर नहीं है। इसका कक्षा में कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि यह दर्शन शास्त्र की कक्षा नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा, प्रसिद्ध न्यू टेस्टामेंट लेखक बार्ट एहरमन इसका एक और उदाहरण है। उन्होंने अब तक संभवतः 20 पुस्तकें लिखी हैं, सभी न्यू टेस्टामेंट को नष्ट करने के उद्देश्य से। और वह एक कट्टरपंथी घर में बड़ा हुआ, मूडी बाइबल कॉलेज गया, वीटन से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इस प्रक्रिया में उसने अपना विश्वास खो दिया और अब वह धर्मयुद्ध पर है। यदि मैं सही हूं कि मैंने अपना विश्वास खो दिया है, तो बाकी सभी को भी अपना विश्वास खो देना चाहिए। हां, प्रोफेसर बार्ट एहरमन एहरमन। लर्निंग चैनल डिस्कवरी पर उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, मीडिया उनसे प्यार करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ध्यान दें कि यहां क्या हो रहा है। हमें एक प्रभाव मिला है, उनके नगर नष्ट हो गए। हमारे पास एक कारण है और फिर हमारे पास एक और प्रभाव है। देखिए, इसलिए फिर से मैंने इसे 300 बार कहा है और यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इसे 300 बार और सुनेंगे। इसलिए जब आप इसे देखें तो पूछें कि यह वहां किस लिए है, क्योंकि यह एक निष्कर्ष का संकेत दे रहा है। इसलिए क्या श्लोक 10 और श्लोक 11 के शेष भाग के विपरीत वे इसे रोककर स्वयं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं? यह सही है, वे कोशिश कर रहे हैं। अब यहां वह कटाई वाला खेत है, लेकिन वे नए पौधे लगाने जा रहे हैं और यह अच्छा होगा और भगवान शुभकामनाएं कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह ईश्वर का मनमाना निर्णय है? मेरा मतलब है, वह सिर्फ यह कह रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं। तुम मुझे भूल गए हो और मैं तुम्हें सजा देने जा रहा हूं। आप जो योजना बना रहे हैं वह पूरा नहीं होने वाला है, या यदि वह आता है तो वह खत्म हो जाएगा। यह एक मनमानी सजा होगी। क्या यह मनमाना है? पाठ को देखें और पाठ क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ममहम्मा पेट्रिसिया, यह एक परिणाम है। यह एक परिणाम है। यह एक परिणाम है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें वास्तव में अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमारे पास इस ईश्वर की तस्वीर होती है, जिसे हे मनुष्य, तुम तिरछी नजरों से देखते हो, वह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन यदि आप चुनाव करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। यदि आप चुनाव करते हैं तो आपको परिणाम भुगतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यह यहाँ इस पाठ में नहीं है, बल्कि केवल इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए है। अगर मैं सबसे अच्छे पौधे लगाऊं जो मुझे मिल सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें पानी देने में बहुत आलसी हूं, तो उनका क्या होगा? वे मरने वाले हैं। अब भगवान मुझसे नफरत करता है ना? नहीं नहीं, मैंने उन शर्तों को पूरा नहीं किया जो उस तरह के जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो यहां भी वही बात है। यदि मैं अपना जीवन इस आधार पर बनाता हूं कि कोई ईश्वर नहीं है, तो जब मेरा जीवन टूट जाएगा तो मुझे वास्तव में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने समीकरण का आवश्यक हिस्सा छोड़ दिया है। मुझे बीजगणित के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि समान चिन्ह के दोनों ओर के दो हिस्सों को संतुलन बनाना होता है। खैर, यदि आप एक प्रमुख घटक को छोड़ देते हैं तो यह कभी भी संतुलित नहीं होगा। इसलिए नहीं कि ईश्वर आपसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि दुनिया इसी तरह बनी है। और इसलिए यह यहां है कि बार बार भगवान कह रहे हैं ये परिणाम है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां स्वर्ग में बैठकर कह रहा हूं, यदि तुम कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नतीजे ठीक है। अब सिर्फ इसलिए कि हमारा समय बीत रहा है, मेरा मानना है कि हम श्लोक 12 में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। याद रखें, अध्याय विभाजन 500 ईस्वी के कुछ समय बाद रखे गए थे। हम बस इतना जानते हैं कि हमें 500 ईस्वी के बाद पांडुलिपियों के टुकड़े मिलने शुरू हुए, जिनमें अध्याय विभाजन थे जो पहले हमारे पास नहीं थे। और जब तक हमें पूरी बाइबल मिलती है जो ईसा मसीह के समय के बारे में है, क्षमा करें, ईसा के लगभग 1000 ईसा बाद 1000 ईस्वी, हमें उनमें अध्याय विभाजन मिल गए हैं। इसलिए जब यशायाह ने पुस्तक लिखी तो अध्याय विभाजन नहीं रखे गए थे। तो यह सब कहते हुए हमने पुनरावृत्ति के बारे में बात की है, हमने कारण और प्रभाव के बारे में बात की है। देखने लायक एक और चीज विरोधाभास है। श्लोक 12, 13 और 14 में क्या विरोधाभास है? आपके पास 12 और 13 में दोहराए गए शब्द और अवधारणाएं हैं, वे क्या हैं? गड़गड़ाहट, गर्जन। गड़गड़ाहट और गर्जना का आपके लिए क्या अर्थ है? आंधी, हाँ, हालांकि इस मामले में यह राष्ट्र ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रों की गड़गड़ाहट। वे समुद्र की गर्जन के समान गरजते हैं। राष्ट्रों की दहाड़। वे प्रचंड जल की गर्जना के समान गर्जना करते हैं। राष्ट्र अनेक जलधाराओं की गर्जना के समान गर्जना करते हैं। अगला शब्द क्या है? परंतु वह उन्हें डांटेगा। और क्या होता है? इन गरजते गरजते राष्ट्रों का क्या होगा? हवा पर भूसी की तरह। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर श्लोक 14 को देखें। मुझे इसका पहला भाग विशेष रूप से पसंद है। शाम को क्या? आतंक। और सुबह? वे जा चुके हैं। मुझे यह कविता याद आती है, रोना तो रात भर सहता है, परंतु भोर को आनंद आता है। वह भगवान की दुनिया है। वह भगवान की दुनिया है। हाँ, परेशानी, दर्द, दुःख। लेकिन वे कहानी का अंत नहीं है। और इसलिए यह यहाँ है। हाँ, ये राष्ट्र गरज रहे हैं। वे अपनी शक्ति में दहाड़ रहे हैं। यह मुझे भजन 2 की याद दिलाता है। राष्ट्र कैसे क्रोधित होते हैं। और फिर मुझे अगली पंक्ति पसंद है। वह जो स्वर्ग में बैठा है हंसेगा। यहां पृथ्वी के राष्ट्र चारों ओर गरज रहे हैं। हम उसकी जंजीरें उतार फेंकेंगे। हम विद्रोह करने जा रहे हैं। हम दंगा करने जा रहे हैं। और भगवान कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसे धमकी नहीं दी गई है। तो ये है ये तस्वीर। यहाँ ये शक्तिशाली राष्ट्र हैं जिनसे हम डरने और भरोसा करने के लिए प्रलोभित होते हैं। भगवान कहते हैं, अपना दृष्टिकोण ठीक करो। वे धूल हैं। वे भूसी हैं। चाहे वे कितनी भी जोर से दहाड़े, चाहे उनकी गड़गड़ाहट कितनी ही भयानक क्यों न हो, सुबह होते होते वे नहीं रह जाते। ठीक है, चलो अब जल्दी से आगे बढ़े। 18.1 में क्या कमी है? बोझ या दैवज्ञ या संदेश के लिए शब्द। अन्य सभी के पास यह है, लेकिन हमारे पास यह यहाँ नहीं है। कई टिप्पणियां कहेंगी कि अध्याय 18 इथियोपिया के विरुद्ध एक दैवज्ञ है। सतह पर नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। फड़फड़ाते पंखों की भूमि जो कुश की नदियों के पार है। बाइबल मिस्र के दक्षिणी भाग और इथियोपिया के उत्तरी भाग को मधुमक्खियों के स्थान के रूप में चित्रित करती है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम नहीं जानते। लेकिन यही विचार है। ब्रह्मांड के बिल्कुल दक्षिणी किनारे पर वे मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। कुश विश्व का बिल्कुल दक्षिणी छोर है। इसके अलावा यहां ड्रैगन झूठ बोलते हैं। तो वे दुनिया के सबसे सुदूर दक्षिणी छोर पर हैं। अब कुश क्या करता है? आयत 2 के अनुसार वे राजदूत, संदेशवाहक और संदेशवाहक भेजते हैं। और वे किसके पास जाते हैं? लंबा और चिकना, निकट और दूर तक भयभीत, एक शक्तिशाली और विजयी राष्ट्र जिसकी भूमि को नदियां विभाजित करती हैं। खैर, संभवतः वह पूर्व में मेसोपोटामिया है। तो यहां विचार है। कुछ दूत भेज रहा है। अब ये बात मैंने इस पृष्ठभूमि पर नहीं कही। मैं अगले सप्ताह के लिए करता हूं। इस समय मिस्र पर इथियोपियाई लोगों, कुश के लोगों का शासन था। तो हो सकता है कि हम बात कर रहे हों, आइए मिस्र और असीरिया के बीच दूत भेजें। आइए देखें कि क्या हम यहां किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं। शायद हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। श्लोक 3। भगवान क्या करने जा रहा है? श्लोक 3। वह एक संकेत ध्वज फहराने जा रहा है। यहाँ वह संकेत फिर से है। चूंकि आप सोमवार की रात को बाहर आए थे, इसलिए यह शब्द थोड़ा हिब्रू भी सीखा जा सकता है। हिब्रू शब्द नेस है, एनेस नेस, और इसका मतलब होता है पता का ध्वज। यह इस पुस्तक में लगभग 6 बार आता है, पुराने नियम में कहीं और नहीं। वह कड़वे अंगूरों से भरे अंगूर के बगीचे को रौंदने के लिए दुश्मनों को बुलाने के लिए एक झंडा उठाता है। मसीहा वह ध्वज है जिसे राष्ट्रों को आने और इसराइल के निर्वासितों को घर लाने के लिए बुलाने के लिए उठाया जाएगा। मसीहा वह झंडा है जिसे राष्ट्रों को अपने पास आने के लिए बुलाने के लिए उठाया जाएगा। यशाया को झंडे बहुत पसंद हैं। यहाँ तो यह फिर से है। परमेश्वर पहाड़ों पर एक संकेत ध्वज फहराने जा रहा है और दुनिया के निवासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ध्यान दें। वह तुरही फूंकने वाला है और उन्हें सुनना चाहिए। खैर, उन्हें क्या सुनना चाहिए? अहा, और वह क्या कहता है? पद 4, मैं शांत रहूंगा और अबके निवास में से देखता रहूंगा, जैसे धूप में निर्मल गर्मी और कटनी की गर्मी में उसका बादल। हम यहाँ राष्ट्र गरज रहे हैं और दहाड़ रहे हैं कि वे दुनिया में क्या करने जा रहे हैं। यहाँ इथियोपिया के लोग संदेशों के साथ मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं? मैं चुपचाप देखूंगा। फिर यह एक प्रकार का विषय है जो पुस्तक में चलता है। ईश्वर की कमजोरी दुनिया की ताकत से ज्यादा मजबूत है। बाद में वह हिब्रू लोगों से कहने जा रहा है, शांति और आराम में ही आपका उद्धार है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक संदेश है और शायद आप में से एक या दो के लिए भी। इस दिन अत्यधिक व्यस्त रहने का ऐसा प्रलोभन, यह करना है, वह करना है, दूसरा काम करना है, और भगवान कहते हैं, नहीं, मुझे ही काम करना है। क्या तुम मुझ में विश्राम करोगे? क्या आप मुझे अपने माध्यम से कार्य करने की अनुमति देंगे? नहीं, 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 मुझे यहाँ अपना आईफोन लेना है। मुझे संदेशों और टेक्स्ट से दुनिया भर में चर्चा करनी है। फसल से पहले जब फूल खत्म हो जाता है और फूल पकने वाला अंगूर बन जाता है, तो वह टहनियों को कांटों से काट देता है और फैली हुई शाखाओं को काट कर अलग कर देता है, और उन सभी को शिकारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाएगा। पहाड़ों से लेकर पृथ्वी के जानवरों तक, शिकारी पक्षी उन पर ग्रीष्मकाल काटेंगे और प्रेवी के पशु उन पर वास करेंगे। मुझे लगता है, और मुझे कहना होगा कि मुझे अन्य टिप्पणीकारों से इस पर पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह खंड इस सब में एक प्रकार का मध्य भाग है, एक प्रकार का समर्थन। हम चले गए और मुद्दों पर फिर से विचार कर रहे हैं। कोई विशेष राष्ट्र नहीं, बल्कि वे सभी राष्ट्र जिन पर हम भरोसा करने और डरने के लिए प्रलोभित होते हैं। और भगवान कहते हैं, अपना दृष्टिकोण सही करो, उन्हें देखना बंद करो, मेरी तरफ देखो। मुझे लगता है, विशेष रूप से इस दिन जब हम उत्तरी अमेरिका में चर्च की गिरावट देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान हमसे यही कह रहे हैं, मुझे देखो, मुझे देखो। यहाँ जो भी काम करना होगा मुझे करने दीजिए। अब जाहिर है वह हमसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी मुद्दा परिप्रेक्ष्य का है। पद 7, तो उस समय सेनाओं के यहोवा के लिए कर किसकी ओर से लाया जाएगा? ये वही लोग हैं, है ना, जिसे इथियोपियाई लोग संदेश भेजने वाले थे। वे लोग आने वाले हैं और वे मेरे लिए श्रद्धांजलि लेकर आने वाले हैं। यह वह आवर्ती विचार है जो यहाँ चलता रहता है। ये 2 बिंदु बार बार उठाए जा रहे हैं। एक तो यह कि राष्ट्र तुम्हारे परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं, और एक दिन राष्ट्र तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आखिर आप उन पर भरोसा क्यों करेंगे? और आखिर तुम उनसे क्यों डरोगे? अपने देवता। अब फिर से मैं कहता हूं, हमारे लिए इस बारे में बात करना आसान है। हम ईसाई धर्म को देखते हैं, जो दुनिया में धर्म परिवर्तन के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। जन्म दर के मामले में मुसलमान हमें पछाड़ रहे हैं, लेकिन रूपांतरण दर के मामले में ईसाई धर्म दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इसलिए हमारे लिए इसे देखना और कहना अपेक्षाकृत आसान है, नहीं? लेकिन यहूदा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है, जेसमंड काउंटी से बहुत बड़ा नहीं है। और कोई कहे, ये सभी राष्ट्र आपके ईश्वर के न्याय के अधीन हैं, और इससे भी अधिक, ये सभी राष्ट्र एक दिन आपके ईश्वर की पूजा करने जा रहे हैं। वाह, जिन्होंने विश्वास लिया, वह विश्वास ले गया। अब ऐसा हो सकता है कि यदि इस देश और उत्तरी अमेरिका में चर्च का पतन जारी रहा, जैसा कि हो रहा है, तो आप में से कुछ लोग जो किशोरावस्था में हैं, उन्हें कुछ हद तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। खैर, दुनिया में हमारा भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि ब्रिटेन में 97% लोग चर्च नहीं जाते? वास्तव में क्या वह सच है? यह सच है, यह सच है। यह यहूदिया के लिए सच था, यह हमारे लिए सच है, और हमें वहां अपना जीवन बनाने की जरूरत है। ठीक है। प्रश्न, टिप्पणियां, अवलोकन। हाँ, यह दीवार से दूर है। ओह अच्छा, यदि आप चाहें तो आप यहां मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। यह अभिव्यक्ति जो बार बार आती रहती है, 18.2, 18.7, यह 55 में भी है, और 65 में, पॉल एक अजीब भाषा में मजबूत लोगों की नकल करता है। क्या किसी विद्वता में कोई विचार है कि यह भविष्यवाणी पॉल के ट्रोआस में पश्चिम की ओर मुड़ने और उत्तरी मध्य यूरोप और इंग्लैंड और अंतः उत्तरी अमेरिका में सुसमाचार के अपेक्षाकृत तैयार स्वागत की आशा करती है, जो एक उभरता हुआ प्रचार आंदोलन रहा है? विवरण फिट बैठता है, और भाषा निश्चित रूप से हिब्रू से बिल्कुल अलग स्रोत है। और मेरे पास टैसिटस में एक नोट है कि वह अपने जर्मनी और अपनी जनजातियों में इसके बारे में कुछ कहता है, लेकिन अब जब मैंने इसे प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझे यह नहीं मिला। क्या यह इस पाठ में किसी भी चीज से पूरी तरह से समर्थित नहीं है? मुझे लगता है कि जवाब हाँ है। उत्तर क्या है? उत्तर हाँ है, यह समर्थित नहीं है। मुझे लगता है कि वस्तुतः हर कोई इस बात से सहमत है कि यह संभवतः बेबीलोनियों को संदर्भित करता है। असीरियन कम से कम राजा दाढ़ी रखते थे, लेकिन बेबीलोन के राजा क्लीन शेव्ड रहते थे। और ऐसे लोग भी हैं जो तर्क देते हैं कि यह इथियोपिया और मिस्र के बीच एक संबंध है, क्योंकि मिस्रवासी क्लीन शेव्ड थे। यह कितना अजीब है, फिरौन नकली दाढ़ी पहनते थे। उसका पता लगाओ। टॉपी, मैं समझ सकता हूं। झूठी दाढ़ी, नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो कुछ तर्क है कि हम इथियोपियाई राजवंश की मातृभूमि और जहां वे अब उत्तर में हैं, के बीच नील नदियों में ऊपर और नीचे गूंजने वाले दूतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आमतौर पर ये वे दो हैं जिनके बारे में मुझे अधिक दूर के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, क्या यहाँ हम ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए कोई संदेश नहीं है, क्योंकि हम इस समय संस्कृति युद्ध में शामिल हैं कि हम इस शून्य राशि वाले खेल में शामिल नहीं हैं? मुझे लगता है कि इवेंजेलिकल हम में से बहुत से लोग इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि हम हारने वाले हैं। हाँ हाँ, क्या यह हमसे बात नहीं कर रहा है? मुझे सचमुच विश्वास है कि यह है। मुझे सचमुच विश्वास है कि यह है। नंबर एक, मुझे लगता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक व्यवस्था का उपयोग करने के प्रयास से जितना संभव हो सके दूर रहना होगा। और नंबर दो, हमें इस तरह से बचना होगा, हे भगवान हमें कुछ करना होगा, पूरा घर हम पर गिरने वाला है। भगवान यहाँ पहले भी रहे हैं और इसलिए हाँ, मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूँ। मैं चुपचाप अपने आवास से देखूंगा और हमें उस पर और हमारे साथ हमारे माध्यम से उसके रास्ते में उसकी जीत की निश्चितता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर को यह बताने के बजाय कि उसे अपने चर्च को कैसे बचाना है, हमें ईश्वर की बात सुनने की जरूरत है कि वह इसे कैसे करना चाहता है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम मेरे अवलोकन में हमें बेहतर महसूस करने के लिए हम राक्षसी बनाना है। हाँ हाँ हाँ, हम उनकी विशेष रणनीति अपनाते हैं और प्रेम इसका हिस्सा नहीं है। हम अब प्यार का इजहार नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, और वे इसे जानते हैं, और वे इसे जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं फिर से, जैसा कि मैं कहता हूँ, मैं राजनीतिक रूप से बहुत रूढ़िवादी हूँ, और फिर भी मुझे चुनाव के दौरान प्रसारित किए गए ईमेल संदेशों के बारे में बहुत बुरा लगा जो कि दूसरे पक्ष के संदर्भ में थे। और हाँ, जब मैं घर पर पढ़ रहा था तब मेरे मन में यह विचार आया कि कब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वर्ण मानक से नीचे चला गया। जैसा कि मैंने इस बारे में सोचा था, जब हम ईश्वर के मानक से दूर हो जाते हैं तो चीजें बिखर जाती हैं। इनमें से कई चीजों में दरार आ गई है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वर्ण मानक से बाहर चला गया और यदि हम ईश्वर मानक से बाहर चले गए तो उसी प्रकार की कई विनाशकारी चीजें हमारे साथ घटित हो सकती हैं। हाँ, फिर यह एक व्यक्तिगत बात और अवलोकन है, लेकिन हमने जो कुछ मुद्दे देखे हैं उनका राजनीतिकरण करना बहुत गलत लगता है। मेरा मतलब है, हम भगवान से सवाल कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही हो रहा है। हाँ, हमने इन चीजों का राजनीतिकरण तब किया है जब ईसाई होने के नाते हमारे जीवन में इसके बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, जब हम चीजों का राजनीतिकरण करते हैं तो हम पूरे मुद्दे पर ईश्वर के दृष्टिकोण को नजरअंदाज करने लगते हैं। फिर ये सरल प्रश्न नहीं है, ये आसान उत्तर नहीं है, और मैं आपको यह सुझाव नहीं देना चाहता कि मामला यही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह यहाँ जो कुछ कह रहे हैं उसमें से अधिकांश हमारे लिए है कि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। मुझे प्रार्थना करने दीजिए। पिताजी, धन्यवाद आपके शब्द के लिए, धन्यवाद सच्चाई के लिए, धन्यवाद इसकी दोषी ठहराने की शक्ति के लिए, धन्यवाद क्योंकि यह हमारे अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में हमसे बात करती है। धन्यवाद, धन्यवाद कि ब्रह्मांड के केंद्र में आराम और शांति है। धन्यवाद भगवान, इन उथल पुथल भरे दिनों में अपना आराम और अपनी शांति हमारी आत्मा में गहराई से प्रवाहित होने दें। जब हम अपने आसपास कई चीजों को गरजते और गरजते हुए देखते हैं और हम इधर उधर भागने या इस तरह से उस समस्या को हल करने का प्रयास करने के लिए इच्छुक होते हैं, हमें केवल निष्क्रियता से मुक्ति दिलाएं, हमारे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कहें, ठीक है भगवान, आप जो करना चाहते हैं वह करें, हमें उससे मुक्ति दिलाइए। लेकिन साथ ही, हे भगवान, जब हम अपने आसपास की दुनिया का सामना करते हैं तो अपनी शांति को हमें भरने दें और हमें सांस लेने दें। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 9, यशायाह अध्याय 17 और 18 है।